Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Anyatra dharma, danyatra dharma, danyatra asmat, krita krita. अन्यत्र भूताच्य भव्याच्य यत् तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बालक नचिकेता ने ब्रह्म तत्व का सम्यक दिग्दर्शन करते हुए परोक्ष ज्ञान सविस्तर प्रकारेण आचार्य यम के सामने रखकर अपने मन की गहरी जिज्ञासा को गुरु के सामने रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान के लिए जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है, और जहां पर भी जिज्ञासा है वहां मालूम पड़ता है कि उसके पहले अज्ञान की गहरी वेदना है। अज्ञान का ज्ञान हुए बिना व्यक्ति के मन में ज्ञान की पिपासा का उदय संभव नहीं है। पहले मालूम तो हो कि मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे को मालूम नहीं है। यदि यही मालूम नहीं है कि ये चीज मेरे को मालूम नहीं है, तो आदमी मालूम करने के लिए आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए अज्ञान का ज्ञान 90 न्याय में इस ज्ञान को अनव्यवसायी ज्ञान बोला है। अज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि अज्ञान का ज्ञान ना हो तो हम उस अज्ञान को काटने के लिए तत्पर होंगे कैसे? रोग है लेकिन पता नहीं है, तो रोग को मिटाने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी हमारी। इसलिए सर्वप्रथम रोग का पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे अज्ञान का पता होना बहुत जरूरी है। अब अज्ञान का पता दो तरीके से संभव है, लक्षण विधिया अथवा हम ज्ञानी के पास पहुंच जाए। रोग का पता भी दो तरीके से लगाया जा सकता है। लक्षण से रोग का पता होने लगता है, जैसे ठंड लगने लगी, बुखार आ गया, तो आप कह सकते कि ये शायद मलेरिया हो। उसको जानने का और कोई उपाय नहीं है, अपने आप में स्वयं को जानना है तो लक्षण विधेया। बुखार के जो लक्षण हैं, रोग के जो लक्षण हैं, वो कई बार रोगी को सूचना देते हैं कि अमुक रोग है। इसका दूसरा उपाय है कि हम डॉक्टर के पास जाए। कई बार ऐसा होता है कि मालूम ही नहीं था कि ये रोग है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये रोग है। ऐसे ही हमारे जीवन में अज्ञान है, ये जानना हो तो लक्षण है। अज्ञान जन्य शोक, मोह, जलन, घृणा, ईर्ष्या, ये सारी चीजें अज्ञान के लक्षण हैं। ये सारी चीजें, ये जो विक्षेपात्मक जगत हैं, ये सब अज्ञानी होने के लक्षण हैं। और इन सारी चीजों की संवेदनाएं हमारे अंदर अज्ञान की संवेदना निर्मित कर सकती हैं। हमें मालूम है कि हमें शोक नहीं होना चाहिए, जलन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो दुख की अनर्थ परंपरा, और इस दुख की अनर्थ परंपरा को जब हम झेलते हैं तो हम खोजते हैं, फिर जैसे बुद्ध ने खोजा। बुद्ध को दुख हुआ, दुख। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और देखने के बाद बुद्ध के मन में एक वेदना प्रकट हो गई। बुद्ध सोचने लगे कि मैं जरा से, मरण से, अस्वस्थता से, अस्वस्थता जन्य दुखों से, ये सारी दुख की श्रृंखलाएं हमारे जीवन में, जलन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इससे परे कैसे हो जाऊं, ये लक्षण मालूम पड़े, दुख के लक्षण, अज्ञान के लक्षण मालूम पड़े, और उसके बाद फिर उसको मिटाने के लिए चल पड़े। अब एक दूसरा उपाय है अज्ञान को जानने के लिए, वो है गुरु के पास जाए। ज्ञानी के पास जाने के बाद हमें सूचना मिलनी शुरू हो जाती है कि हम अज्ञानी हैं। परम पूज्य महाराज श्री के पास किसी भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी आप जब सत्संग करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हम दुखी हैं, आपका सत्संग श्रवण करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन जब आपके सत्संग के बाद हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हम दुखी हैं, ऐसा लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। यही तो विशेषता है, ज्ञानी के पास गए बिना ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम अज्ञानी हैं, हमारा कद हमें मालूम होना शुरू हो जाता है। और जब वो सूचना देते हैं कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, तो उस समय हमें मालूम होने लगता है कि वास्तविक सुख ये है, जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, और वहीं से जीवन में क्रांति का सूत्रपात हो जाता है। आदमी फिर सोचने लगता है कि सच्चा सुख क्या है, सच्चा आनंद क्या है, दुख निवृत्ति क्या है, उसके उपाय क्या है। ज्ञानी के पास जाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें मालूम ना हो कि हम अज्ञानी हैं, और एक बार मालूम हो जाए कि हम अज्ञानी हैं और कुछ करना नहीं है, एक बार केवल पता हो जाए कि हम अज्ञानी हैं और उसके बाद फिर अंदर से स्फुरना, उस अज्ञान को मिटाने की प्रेरणा, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ अपने आप शुरू हो जाता है। और यहां पर भी मालूम पड़ा, अज्ञान का बोध हुआ कि मैं अज्ञानी हूं, और उसी के साथ उनके जीवन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का उदय हो गया। जो आप ब्रह्म सूत्र में पढ़ते हैं, पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और यहां बालक नचिकेता के जीवन में भी ब्रह्म जिज्ञासा का उदय हो गया। यत् पश्यसि तद् वद, आपके जीवन में जो अपरोक्ष अनुभूति है वो आप मेरे को कहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए तो वहां पर भी यही भाव था, वो पूछ रहे थे कि आपने ईश्वर को देखा है, आपने भगवान को देखा है, भगवान के बारे में सुना तो हमने भी बहुत है, और सुनाना चाहे तो हम भी उस पर प्रवचन कर सकते हैं, बहुत बड़ी व्याख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बिना देखे, केवल सुनकर श्रद्धा से, लेकिन विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आपने देखा है क्या। बिल्कुल बालक नचिकेता का भी यही प्रश्न है, यत पश्यसि। वहां पर भी विवेकानंद जी ने बोला आपने देखा है, और वहां जवाब भी मिला यही, बोले हां। रामकृष्ण परमहंस ने तो यहां तक कहा कि अरे बोले तुमको जैसे मैं देख रहा हूं ना, वैसे मैं उसको देखता हूं। और वो बात केवल शब्द की नहीं थी, वो गहरी अनुभूति की थी। और उसके बाद की घटनाएं तो आपको मालूम है। यहां बालक नचिकेता ने बहुत गहरी बात बोली, यत पश्यसि तद वदन। और उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए आचार्य यम, क्योंकि वो जान गए कि बालक नचिकेता की अंतश चेतना की चाह क्या है, वो वास्तविक क्या चाहते हैं। गुरु जानना चाहते हैं कि शिष्य चाहता क्या है, और जानने का कोई उपाय नहीं। हमारा जो आचरण यह हमारे होने की सूचना है, हम जो बोलते हैं, हम चलते हैं, क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे होने की सूचना है। हम क्या है, अंदर से सोचते क्या है, वास्तविक रूप से हम भीतर से क्या है, वो सारी चीजें शब्दों में आ जाती हैं, चाह में आ जाती हैं, क्रियाओं में, आचरण में आ जाती हैं। आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, और डॉक्टर के पास जाए तो उसकी व्याकुलता बता देती है वो कितना परेशान है। और डॉक्टर के पास जाए बड़े मुस्कुराते हुए आनंद से, और डॉक्टर को बोले डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, तो डॉक्टर मानेगा ही नहीं। डॉक्टर नहीं मानेगा, डॉक्टर देखता है रोग और उस व्यक्ति के कहने के ढंग, वो अनुमान लगाता है कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। और कई बार तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अच्छी दवा दे इसलिए बहुत ज्यादा वो दुख का प्रदर्शन करता है, ये भी देखने को मिलता है। एक बार की बात है, हरिद्वार में थे हम लोग, निर्मल संप्रदाय के आचार्य श्रीमान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनके पास बहुत सारे महात्मा लोग रहते, पचासों साधु रहते। एक महात्मा था, वो हमारे बगल के कमरे में रहते थे, और उनके कमर में, पैर में कोई दर्द था। बहुत आनंद से वो हम लोगों से बातचीत किया करते थे। अचानक मैंने देखा कि जैसे ही वो आचार्य के कक्ष में प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने एक हाथ कमर पर रखा, टांग टेढ़ी की, और बहुत लंगड़ते लंगड़ते आचार्य श्री के पास गए, और उन्हें बहुत ही टेढ़ा मुख करके बोला, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, और वो बीच बीच में कराह भी रहे थे, आ तो हमने भी देखा कि ये क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ये क्या हुआ। बाहर जब आए, बाहर आने के बाद मैंने पूछा, और वो बाहर आते ठीक हो गए हो, तो मैंने कहा कि अंदर क्या हुआ था, अरे बोले ऐसा नहीं करूंगा तो बोले डॉक्टर के पास भेजेंगे ही नहीं हो। वो सोचेंगे कि छोटी मोटी बीमारी होगी, ध्यान नहीं देंगे, और इतना सारा करने के बाद अब वो ध्यान देंगे मेरे। कई बार साधक ऐसी भावना को लेकर भी गुरु के पास जाता है, लेकिन वो भी चीज पकड़ लेते हैं गुरु, वास्तविकता का पता गुरु लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। ये लक्षणाभिव्यक्ति, आंतरिक अस्तित्व का बोध हमारे व्यवहार के द्वारा गुरु लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तविक जिज्ञासु मिला, आज वास्तविक जिज्ञासु मिला, आचार्य यम को आज वास्तविक जिज्ञासु मिला, और आचार्य यम बहुत प्रसन्न हुए। आश्चर्य की बात यह आपकी पहले अध्याय की दूसरी वल्ली है और इसके पहले भी बालक नचिकेता ने प्रश्न पूछा था, लेकिन उसका उत्तर सही ढंग से आचार्यम ने नहीं दिया था। वो प्रशंसा करते जा रहे थे। प्रशंसा कोई समस्या का समाधान नहीं है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन अब उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। बहुत सुंदर उत्तर है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अब उस तत्व की बात कह रहे हैं जिस तत्व के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अब एक ही श्लोक में उनको जो कहना था वो कह दिया, लेकिन आचार्य यम उस तत्व को पारंपरिक वैदिक औपनिषद विद्या का प्रतिपाद्य कहना चाह रहे हैं। जो तत्व है वो औपनिषद विद्या वेदांत ज्ञान का विषय है। हमारे ऋषियों की, हमारे उत्तर देने वाले लोगों की सबसे बड़ी एक विशेषता है, जैसे सुखदेव जी महाराज जी को राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देते समय सुखदेव जी महाराज ने ये कभी नहीं बोला कि वत्स ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी खोज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। यह हमारे ऋषियों की अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहने की और ये परम विनम्रता की बात है। उनका अनुभव होते हुए भी, सुखदेव जी महाराज जी का अनुभव होते हुए भी, मैत्रेय का अनुभव होते हुए भी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बात मेरी अपने तरफ से, ये मेरी खोज, माने बौद्धिक प्रदर्शन हमारे ऋषियों में कभी नहीं रहा है। और यहां पर भी आचार्य यम ये बात अपनी बात के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूं वो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, जो मैं कहना चाहता हूं उसके बारे में वेदों में बहुत कुछ कहा गया है। और ये भी बहुत गहरी बात है, आप ध्यान देंगे, एक एक शब्द पर दृष्टि डालेंगे, हमारे शास्त्र बहुत गहरे अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, सूत्रात्मक, और उसका विस्तार आप जितना चाहे कर सकते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद, यहां आपको मालूम है चार वेद हैं, ऋग यजु साम और अथर्व, चारों वेद कर्म उपासना और ज्ञान, कांड त्रयात्मको वेद। वेद में तीन कांड हैं। आप अक्सर इसको श्रवण करते रहते हैं, वेद में कहते हैं 100,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्रों में कर्म का प्रतिपादन, 16,000 मंत्रों में उपासना का प्रतिपादन और 4,000 मंत्रों में ज्ञान का प्रतिपादन। ये कांड त्रयात्मक वेद, कर्म उपासना और ज्ञान। और यहां आचार्य यम कह रहे हैं सर्वे वेदा, कांड त्रयात्मक जो चारों वेद, वो जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, जिस परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, जिसके बारे में तुम श्रवण कर रहे हो। अब यहां एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन ज्ञान के द्वारा संभव है, लेकिन कर्म और उपासना के द्वारा भी उसका प्रतिपादन कैसे है? औपनिषद विद्या वेदांत में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है, लेकिन यहां पर आचार्य यम करें सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। उनको तो ये कहना था कि भाई वेदांत ही जिसका प्रतिपादन करते हैं, लेकिन ये कह रहे कर्म, उपासना और ज्ञान सर्वांगीण जो वेद है वो जिस तत्व का प्रतिपादन करते, कर्म भी तत्व का ही प्रतिपादन करता है। हमारे जीवन में कई प्रतिबंध हैं, जहां पर हम हैं वहां से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, उन प्रतिबंधों को हटाना बहुत जरूरी है। मल, विक्षेप और आवरण हमारे अंतःकरण में सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है वो मल है। मल माने वासना, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, मृत्यु का भय, बहुत सारी चीजें हैं, इसको मल बोलते हैं। मल का मतलब होता है मैलापन, मल माने अशुद्धि, चित्त की अशुद्धियां। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में, आत्मज्ञान में, तत्व बोध में सबसे बड़ा प्रतिबंध है, और उस प्रतिबंध को धोना भी बहुत जरूरी है, उसको मिटाना भी जरूरी है। और उसको मिटाने का उपाय शास्त्र ने बताया, निष्काम कर्मयोग। भगवान ने गीता जी में भी बहुत जगह पर बोला है, बहुत जगह पर निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन भगवान ने गीताजी में बहुत जगह पर किया। भगवान जहां पर भी कर्म का विधान करते हैं वो निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म फल का अधिकार नहीं, माने निष्काम कर्मयोग। भगवान जगह जगह पर कहते हैं कि आप कर्म करो निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं ना तो हमारे भीतर की जो कामना है वो धीरे 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 दूर होती जाती है। कामना को मिटाने का उपाय और कोई दूसरा नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करते रहना। प्रभु का चिंतन, जप, ध्यान, ये सारी चीजें हमारे अंतःकरण के मल को मिटाने के उपाय हैं। निष्काम कर्मयोग और यहां तक सकाम कर्मयोग भी, जो हमारे वेदों में कर्म के रूप में प्रतिपादन किया स्वर्ग कामो एजेत आदि वाक्यों के द्वारा, कि आपको स्वर्ग की कामना है तो आप यज्ञ करो, ऐसा बोला है। यहां तक बोला है कि आपको शराब पीने की इच्छा है, बोले कोई बात नहीं, आप यज्ञ करो और उस यज्ञ के बात शराब का पान करो। अब आपको भी लगेगा कि ये बात क्या बोल रहे हैं, वहां तो यहां तो लिखा पंच पंच नखा भक्षा, आपको मांस खाने की इच्छा, बोले हां खाओ, पंच पांच पांच नख वाले खाओ, उन्होंने गिना दिया ये पांच चीजें तुम खाओ। वहां खाने का तात्पर्य नहीं है, खाने पर नियमन करने का तात्पर्य। आप किसी को बताया गया कि तुमको शराब पीना तो पियो, लेकिन यज्ञ करके पियो, अब आदमी का नियमन हो गया ना, अब जब यज्ञ करेगा तब पिएगा। अब यज्ञ करने तक तो उसके जीवन में संयम हुआ, और जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता है या जिन्होंने किया नहीं वो बोलेगा भैया हम नहीं पी सकते क्योंकि हमने वो कर्म नहीं किया है। और वहां पर भी जो व्यक्ति यज्ञ करके शराब का पान करता है वहां पर भी शराब के पान की प्रवृत्ति को बढ़ाना नहीं है, वहां पर भी भोग के द्वारा उसको धीरे धीरे वैरागी में ले जाना है। हमारे अंदर इतना फोर्स है, वासना की तीव्रता है, और उस वासना की तीव्रता को काटने के लिए शास्त्र ने उपाय बता दिया। वासना की तीव्रता कई बार भोग से मिटती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज खाने की इच्छा है, बहुत मन में आ जाती, बहुत मन में आ जाती है, और इतनी तीव्रता हमारे अंदर बढ़ती है, लेकिन आश्चर्य की बात वो चीज खा लेती तो अरे आदमी को लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं था, ऐसे हम पागल होते जा रहे थे। आदमी को मालूम पड़ता है, भोग से भी भोग्य पदार्थ की वास्तविकता का पता चल जाता है, और वो तीव्रता भोग के द्वारा कम होती जाती है। इसलिए अंतिम तावत कर्मानि कुर्वित यावत न निर्वेदित। भागवत कहता है कि कब तक आप कर्म करते रहो, जब तक आपको वैराग्य न हो जाए। तब तक आपको खाना है, खाते खाते खाने से वैराग्य हो जाए। बड़ी गहरी बात है। अब वो बात अलग है कि खाने के तरीके हमारे सही नहीं है, इसलिए खाते खाते खाने से वैराग्य नहीं होता है। हम सही ढंग से भोग में प्रवेश करें, नैतिकता, चरित्र, संयम आदि के साथ, तो धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, भोग से भी वैराग्य हो जाएगा। इसलिए शास्त्र ने जो भोग की बात, कर्म की बात, कर्मजन्य फल की बात, स्वर्गादि फलों की बात जो कही है, सकाम कर्म की कर्म का प्रतिपादन किया है, वो व्यक्ति की जीवन की कामनाओं को और तीव्रतर बनाने के लिए नहीं, उसकी कामना को धीरे धीरे कम करने के लिए। और कम करने का उद्देश्य यही है, उसको अकाम निष्काम बनाकर उस तत्व को पाने के योग्य बनाना है। जैसे कि मां अपने बच्चों को धीरे धीरे समझाते, बेटा ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चा जब नहीं मानता तो मां थोड़ा सा दे देती, ले, उसको मालूम है ये नहीं खाना है, लेकिन मां बोलती बेटा थोड़ा सा ले ले, और उसके धीरे धीरे उसकी इच्छा पूरी करा देती, खत्म करा देती है। एक कोई साधु थे, उनकी एक बड़ी अद्भुत बात है, उनको कोई एक फल बहुत अच्छा लगता था और वो फल खट्टा था, खाने के बाद गला खराब हो जाए, कुछ बुखार आ जाए, लेकिन वो उनको बहुत अच्छा लगता था, फल बहुत अच्छा लगता था। मां बहुत समझाती, पिताजी बहुत समझाते, लेकिन वो बच्चा मानता ही नहीं था। एक दिन उनके पिताजी ने बहुत सुंदर सुंदर वो पके हुए फल टोकरी में भर के अपने बच्चे के सामने रखा और उन्हें कहा कि आओ बेटा, आज जितने तुमको फल खाना है खा लो। मां ने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये बीमार पड़ जाएगा, देना हो तो एक दो मुश्किल से दो, ये इस बीमार पड़े। उन्होंने कहा नहीं, इसको खाने दे, आज इसको भरपेट खाने दिया, आज कोई नहीं टोकेगा इसको। पत्नी को रोका उन्होंने, बच्चे को इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया, बोले बेटा आज इतना, और वो बच्चा देख देख के खाता जा रहा, और वो जैसे खाया वैसे बीमार पड़ गया वो। और उसके पिता ने बोला बेटा ले और खा ले थोड़ा, बोले नहीं अब नहीं खा सकता। उस बच्चे को मालूम पड़ा कि ये खाने से भी बीमार पड़ा हो, और पिताजी बोले ये बहुत सुंदर है, ओहो, और उसके सामने खा रहे थे वो, और वो बोल रहे थे ले इसको खा ले बहुत मीठा बहुत, और वो बच्चा बोला था नहीं पापा ये नहीं खा सकता।